Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Bolo bolo
isko upar rakhna chahiye aawaz ko Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Shrila Prabhupada ki तभी हम लोग यहाँ पर तपोवन में एक्चुअल तपोवन के बीच में आ गए हैं और इस स्थान के आप यहाँ से दर्शन कीजिए हम वहां पर लेके जाएंगे आपको आपने देखा जब आप टर्न करके आए तो एक टनल से पानी आ रहा था हा? और वहां से भी पानी आ रहा है आप देख रहे हैं ऐसे वो ब्रिज के नीचे से जल आ रहा है तो वो गोदावरी जी हैं और यहां से जो आ रही है वो कपिला नदी है और आगे जाकर आप देख रहे हैं कपिला और गोदावरी का संगम वहां पर मिलेगा आपको थोड़ा आगे जाकर यहां से गोदावरी आ रही है और वहां से कपिला नदी मिल रही है कपिला नदी का इतिहास हम आपको कल के दिन बताएंगे कपिल धारा तीर्थ जब जाएंगे तब बताएंगे और यहां पर अग्निकुंड और चक्र तीर्थ है यहीं पर चक्र जो है भगवान का यहां पर आके प्रहार हुआ था और गोदावरी जी को फिर प्रकट किया गया था और अग्निकुंड कथा इस कथा में आएगी तो मैं बताऊंगा आपको तो ये तपोवन है यहां पर राम लक्ष्मण जी ने वनवास किया है तपस्या भी की है भजन किया है तो यहां पर जब 10वां साल बीत जाता है उनके वनवास का काफी साल उन्होंने यहां पर निवास किया है कुछ साल रहने के बाद में बहुत साल यहां पर उन्होंने निवास किया है और जब 10 साल बीत जाते हैं तो उसके बाद में 10वां जो सर्दी का ऋतु है वो खत्म हो जाता है तो अचानक उनके वो वेट कर रहे हैं राम और उसे लक्ष्मण की अभी बार बार राक्षसों का जिक्र हुआ है लेकिन अभी दर्शन नहीं हुआ राक्षसों का तो एक बार ऐसे ही सीता राम लक्ष्मण अपने कुटी में बैठे थे तो अचानक वहां एक भयंकर राक्षसी आती है शूर्पणखा नाम की और वो पूरे वन में विहार करती रहती है देखने के लिए कहां ब्रेकफास्ट मिलेगा कहां लंच मिलेगा मतलब किसी को मार कर खाना है उनको लेकिन जब वो रामचंद्र को देखती है तो उसे खाने की इच्छा नहीं होती है उसके मन में काम वासना जागृत हो जाती है क्योंकि परम भगवान रामचंद्र जी बहुत ही सौंदर्यवान थे अनंत काम देव के समान उनका सौंदर्य था एक एक कामदेव के हजारों करोड़ों गुना उनका सौंदर्य था तो उनके सुंदर शरीर को देखते हुए शूर्पणखा मोहित हो गई और काम वासना में लिप्त हो गई और सीधे रामचंद्र के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे विवाह करना है मैं आपसे रूप से मोहित हो गई हूं और वहां जाने के पहले अपने रूप को बदल लेती है क्योंकि वो बहुत अकरार विकरार राक्षसी थी उनके बड़े बड़े दांत थे बहुत भयंकर दांत थे उसके आंखें थी बहुत भयंकर शरीर था उसका बड़ा बड़ा तो जानती है कि ऐसे शरीर में मुझे वो आकर्षित नहीं होंगे मुझे इसलिए वो सुंदर युवती का स्वरूप धारण करके वहां पहुंचती है और श्री रामचंद्र को अपना प्रपोजल देती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ तो रामचंद्र जी पहले पूछते हैं आप कौन हो इतने सुंदर पुरुष आप लग रहे हो साधु पुरुष जैसे लेकिन आपका शरीर छत्री जैसा है आपके कंधे पर धनुष का निशान है, जहां पर धनुष रख के चलते हैं तो क्षत्रियों के कंधे पर निशान होता है धनुष का, और आपकी सुंदर भुजाएं हैं शक्तिशाली। आप कौन हो और इस जंगल में अकेले इस घने जंगल में क्यों निवास कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत राक्षस रहते हैं, इतने भयंकर अवस्था में आप क्यों रह रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश दशरथ जी का मैं पुत्र हूँ राम, ये मेरी पत्नी सीता है विदेही कुमारी, और ये मेरे भाई है लक्ष्मण जी, अब अपना परिचय दो। तो वो कहते हैं मैं बाहा भयंकर राक्षस राज रावण की छोटी बहन हूँ, और मेरे दो भाई खर और दूषण भी यहाँ रहते हैं, और मैं इस जंगल में बिना बिंदास यहाँ पर मैं विहार करती हूँ और अपने भक्ष को प्राप्त करती हूँ, और मैं आपके रूप से बड़ी मोहित हो गई हूँ। मेरी इच्छा यह है कि इस दुर्बल जो पत्नी है आपकी, जो कुरूप दुर्बल पत्नी है, मतलब तो बहुत सुंदरवती थी सीता देवी, लेकिन अभी उसके अपना हित साध्य करना है, इसलिए वो कहती है बहुत दुर्बल है, शक्तिहीन है, हाँ, और राज्य से भ्रष्ट हो गई है, ऐसी कन्या को छोड़कर, ऐसी पत्नी को छोड़कर आप मुझसे विवाह कीजिए और हम लोग बड़े आनंद से इस दंडक वन में विवाह करेंगे। तो राम जी कहते हैं कि ये मेरी बड़ी प्रिय पत्नी है और मैं पत्नी को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन लक्ष्मण जी यहाँ पर अकेले हैं, उनकी पत्नी नहीं यहाँ पर, तो आप उनसे, वो मेरे जैसे ही मेरे भाई है, बड़े शूरवीर है, उनसे आप बात कर सकते हैं। फिर वो काम वासना से ग्रस्त जो है लक्ष्मण जी बहुत सुंदर थे, तुरंत वहां मुड़ जाती है और उनको प्रस्ताव देती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो दास हूँ, मैं भाई की सेवा में सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आया हूँ, अगर मेरी पत्नी बनोगी तो दासी बनकर रहना पड़ेगा, ये जो मेरी भाभी है उनका, उनकी और मेरे भैया की दासी बनकर आपको रहना पड़ेगा, इससे अच्छा यह है कि आप राम जी से ही वापस प्रस्ताव रखो। फिर वापस राम जी के पास जाती है, तो राम जी कहते हैं कि मैं तो एक पतिव्रता हूँ, मैं केवल एक ही पत्नी के साथ रह सकता हूँ, दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो समझ में आता है कि ये जो औरत बीच में है इसकी वजह से ये मना कर रहे हैं, तो मैं अभी इस औरत को खा जाती हूँ, इसलिए वो जोर से झपकती है सीता जी के ऊपर। तब तक राम कहते हैं कि अभी मजाक का समय खत्म हो गया, लक्ष्मण अपनी तलवार निकाल के इसको दंड दे दो, इसको कुरूप बना दो, और ध्यान रखना इसको मारना नहीं क्योंकि ये स्त्री है। हाँ, इसमें भी याद रखते हैं कि क्षत्रिय पुरुष स्त्री का वध नहीं करते हैं। तो लक्ष्मण जी हवा की गति से तत्क्षण खड्ग निकालते हैं और एक झटके के अंदर उसका नाक और दोनों कान काट देते हैं और उसको उठाकर गोदावरी जी के उस तरफ फेंकते हैं, मतलब यहां से उस तरफ फेंक देते हैं। तो ये जो वहां का हिस्सा जो है गोदावरी का, वो नासिक बना है और ये पंचवटी है, ठीक है, इसका नाम नासिक हुआ है। तो जैसे ही अचानक वो काम भावना से लिप्त स्त्री अचानक जब हमले को सहनती है, एकदम वो आश्चर्य हो जाती है एकदम उसको, और एक झटके में पता चलता है कि उसका शरीर खून से भरा हुआ है, नाक से बह रहा खून छाती पर पूरा वस्त्रों को मैला करते हुए पूरा भीग गया है, कान से खून बह रहा है और जोर से चीखती है, कई मील तक उसकी चीख जो है गूंजती है वन में, और भाग भाग के चिल्लाते हुए चली जाती है और अपने भैया खर और दूषण को मिलती है। तो खर और दूषण रावण के भाई है छोटे, और 14,000 सैनिकों के लेकर वो यहां पर इस स्थान की रक्षा करते हैं अपने अधिकार में, है तो वनों भजन करने का वन लेकिन सब आतंक मचा के रखते हैं यहाँ पर। एनीवे, खर दूषण के वध की कथा हम बलाराम मंदिर में करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही स्त्री का अपमान होता है, उसके प्रस्ताव को मान देने के जाता है, तो रामचंद्र समझते हैं कि अभी इसके आगे बहुत संकट आने वाला है, तो वो सीता देवी को लेकर लक्ष्मण की उपस्थिति में यहां पर आते हैं, और यहां पर उनकी दिव्य इच्छा से ब्रह्मदेव और अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं, और अग्निदेव को अपनी प्रिय सीता देवी जो है वो उनको अर्पण करते हैं, वो कहते हैं अपनी रक्षा के लिए अपने पास रखना और योग्य समय पर हम उनको लेने के लिए वापस आ जाएंगे। तो उसकी जगह पर वो अग्निदेव जो है अपनी तरफ से राम भगवान को छाया सीता को देते हैं, शैडो ऑफ सीता, नॉट ओरिजिनल सीता, क्योंकि जो मूल सीता है उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, और भगवान जानते हैं वो किस काम के लिए आए हैं, रावण का वध करने के लिए आए हैं, देवताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए आए हैं, तो जानते हैं कि रावण हरण करेगा, सब भविष्य को जानते हैं भगवान, इसलिए वो सीता देवी को अग्नि के हवाले करते हैं और छाया सीता को लेकर फिर अपने कुटी पे लौटते हैं, और उसके बाद में फिर खर दूषण और युद्ध होता है, वो सब उसके बाद की कथाएं हैं। तो लोग समझते हैं कि भगवान ने सीता देवी को राज्याभिषेक के बाद में त्याग दिया, फिर उनसे अग्नि परीक्षा करवाई, क्या जरूरत थी, इतनी सती पत्नी होने के नाते फिर भी भगवान ने उन पर शक किया, ऐसे सब नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। जब हम आचार्यों से सब बातें सुनते हैं तो उसका मतदार्थ हमारे समझ में आता है। तो सीता देवी जो उन्होंने अग्निदेव को सौंप दी थी, उनको प्राप्त करने के लिए फिर उन्होंने अग्नि परीक्षा का लीला रचा। तो अग्नि परीक्षा जब हुई और जब सीता देवी उसमें प्रवेश कर गई, तो छाया सीता प्रवेश करके अपने पिता के पास वापस चली गई और अग्निदेव सीता देवी को लेकर वापस आए। तो आपको दिखाई क्या पड़ा कि सीता देवी अग्नि के बाहर गई और बाहर आई, ऐसे अंदर गई और बाहर आई, लेकिन अंदर जाती है छाया सीता और बाहर आती है मूल सीता, फिर उनका फिर भगवान से मिलन होता है। तो ऐसी कथा है। तो इस जगह को जो हमने पहले देखा था, अभी तो ये खंडर होते जा रहे हैं, जिस तरह से आप दर्शन कर रहे हैं, कितने बालक यहाँ पर अभी आए हैं, अभी बड़े होकर आएंगे तो और वहां पर नष्ट होते नजर आएगा। यहाँ पर ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर से पानी बहता था पूरा, कपिला नदी का और गोदावरी जी का। और हमने महाराज जी की कथा जो है इस पत्थर पर बैठकर सुनी है यहाँ पर, और हमारे बाजू से पानी बहता था, ऐसे इतना पानी हुआ करता था। जैसे कलयुग के प्रभाव से, समय के प्रभाव से आप देख रहे हैं, यहाँ से कुछ मील आगे नासिक का जितना सुवेज है वो गोदावरी में डाल देते हैं सारा सब, मतलब जितना पवित्र यहाँ का लोग जो है, कलयुग के लोग सब नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ पर आके बड़े भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो तीर्थ स्थान है ये मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ केवल आने मात्र से ही हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे अंदर भगवत भावना जागृत हो जाती है, हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सेवा भाव यहाँ निर्माण होता है। इसलिए स्थानों का होना बहुत जरूरी है। और अगर ये स्थान दृश्य रूप से अगर आकर्षक नहीं होंगे तो यहाँ पर लोग नहीं आएंगे, केवल पिकनिक के लिए क्यों न हो, लेकिन जब यात्री लोग आते हैं इस स्थान की केवल देखने मात्र से ही यहाँ पर शुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को यहाँ पर लाए, इसकी महिमा को समझाएं और समझे और यहाँ के आचमन करें, ताकि हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और उस कुटी में जाएंगे, वहां पर अग्निदेव ब्रह्मा जी के उपस्थिति में रामचंद्र जी ने सीता देवी को उनके सौंप दिया था। वहां पर दर्शन करेंगे, प्रार्थना करेंगे और यहां से फिर हम अभी रामकुंड चले जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कुछ देर के लिए आप लोग यहां बैठिए, कुछ बात मत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपके जो भी मन में प्रार्थना है, क्योंकि ये तपोभूमि है, यहां पर भगवान का अस्तित्व है, भगवान का निवास है। और हृदय से आप भगवान से यहां पर प्रार्थना कर सकते हैं, जन कल्याण के लिए, आत्मा के उन्नति के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सबके लिए आप प्रार्थना कीजिए, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम सब लोग आपकी सेवा में आए और जिस प्रकार यहाँ पर लीलाएं हुई है उनका स्मरण हमें हमेशा होता रहे, उनका सार हमारे हृदय में प्रकट होता रहे। सब लोग 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिना बात किए भगवान से प्रार्थना कीजिए।